दिन भर 5 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। निर्भया बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को रखा बहाल।
जिस तरह से कोर्ट में जैसा हमने फैसला पढ़ा, मुझे यही महसूस हुआ कि देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है।
अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की हेल्थ केयर पॉलिसी का रास्ता बंद होने से क्या भारत पर भी पड़ेगा असर? और अपने अंतिम दिनों में बंकर में बंद जर्मन तानाशाह हिटलर के मन में क्या चल रहा था?
Hitler was sitting and waiting for some rescue, but he made very clear he wouldn't leave, but he would die in Berlin.
सुनिएगा विवेचना, पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारत में दिसंबर 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को मिली मौत की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। निचली अदालत ने इस मामले में मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को मौत की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात पर विचार विमर्श किया है। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब सेना ने दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसे कश्मीर में सेना का बीते 15 साल में सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज शाम सार्क सैटेलाइट GSAT-9 का प्रक्षेपण किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम और सार्क देशों के लिए अनमोल तोहफा बताया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से मिल रही खबरों के मुताबिक सीमा पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के कम से कम 9 नागरिक मारे गए हैं और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की आवाज़ चमन सीमा के दोनों ओर सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान की सेना का आरोप है कि अफगान बॉर्डर पुलिस उन सैनिकों की गोलियां मार रही है जो सीमावर्ती पाकिस्तानी देहातों में, गांव के इलाकों में जनगणना का काम कर रहे हैं। लेकिन कंधार में मौजूद अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी का आरोप है कि पाकिस्तान के सैनिक अफगानिस्तान के इलाके में घुस रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अपने नेता किम जोंग उन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दक्षिण कोरिया समर्थित एक चरमपंथी समूह ने जैव रासायनिक हथियारों के जरिए किम जोंग उन को मारने की योजना बनाई है। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन पर इन आरोपों की बाकायदा घोषणा की गई। उत्तर कोरिया के भीतर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के चरमपंथी समूह को काम पे लगाया है, जिसका उद्देश्य हमारे सर्वोच्च नेता पर जैव रासायनिक हमला करना है। इसका पता हाल ही में चला, लेकिन हमारी चरमपंथ निरोधक कार्रवाई अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये थी उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन पर की गई घोषणा। ये दावा ऐसे समय किया गया है जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वे उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन में 1 महीने बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले हो रहे स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने काफी बढ़त हासिल कर ली है। लगभग 1/3 नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी 100 से अधिक सीटों पर हार गई है। यूरोपीय संघ विरोधी UK इंडिपेंडेंट पार्टी के समर्थन में भी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने जून में ये कहकर मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है कि इससे उनके हाथ मजबूत होंगे। टेरिजा मे का दावा है कि इससे ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधी बातचीत और समझौते करने में आसानी होगी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख ने कहा है यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने पर देश का मुख्य वित्तीय केंद्र सिटी ऑफ लंदन काम करना बंद कर देगा। ब्रिटेन में गोल्डमैन सैक्स के 6,500 कर्मचारी काम करते हैं। BBC समाचार।
पांच मई शुक्रवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। आपको ही 3.5 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की एक पैरामेडिक छात्रा के साथ हुई बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पीड़िता का नाम बाद में जाहिर किया गया, मगर जीवन मौत से लड़ने की उसकी जिजीविषा को सलाम करते हुए उसे एक नया नाम मिला, निर्भया। निर्भया मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई। विशेष अदालत ने 1 साल पूरा होने से पहले ही 4 मुख्य अभियुक्तों को मौत की सजा सुना दी। सजा को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। 4 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी। पूरे ब्यौरे के साथ नितिन श्रीवास्तव।
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूर दराज इलाकों में निंदा भी हुई थी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर कड़े कानून बनाने की मांग भी तेज हुई। मामले की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई तेज की। हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही और करीब 1 साल तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सजा बरकरार रखी। सरकारी वकील बीएल कपूर ने अदालत से बाहर निकलकर पत्रकारों को बताया,
जिस एग्रेवेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है, इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ दी सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है, तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की, उसको अपहोल्ड किया और अपीलों को डिसमिस कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 4 दोषियों को रियायत नहीं दी जा सकती। जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये भी कहा कि इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती। अगर किसी एक मामले में मौत की सजा हो सकती है तो वो यही है। निर्भया कांड सदमे की सुनामी था, ऐसा कहा अदालत ने। निर्भया की माँ आशा देवी और पिता बद्रीनाथ भी फैसला सुनाए जाने के समय मौजूद थे। आशा देवी ने कहा कि उन्हें इसी फैसले की उम्मीद थी।
आज जिस तरह से कोर्ट में जज साहब ने फैसला पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा, तो मुझे यही महसूस हुआ कि देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। बस कोशिश हम करेंगे तो हमारी, हमको चाहे हमारे जैसे और लोगों को भी इंसाफ जरूर मिलेगा।
भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी फैसले पर संतोष व्यक्त किया है।
उस बहादुर लड़की के साथ जिस तरह का अन्याय किया गया था वो क्रूर था, शर्मसार करने वाला था। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि भारत के कानून में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आज कोर्ट ने निर्णय किया है।
दहला देने वाली इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी, जबकि मामले का एक और दोषी जो कि नाबालिग था अपनी 3 साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका है। रहा सवाल उन 4 आरोपियों का जिन्हें मौत की सजा मिल चुकी है, तो उनके पास अभी भी 2 विकल्प हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका दायर करें। अगर इस याचिका पर भी विपरीत फैसला होता है तब फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का ही विकल्प बचेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा, मगर मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है। हमारे साथ ही कुलदीप मिश्र ने आज के फैसले के बाद इस बहस की फिर से पड़ताल की।
निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा की जरूरत पर भी मुख्तलिफ विचार सामने आए हैं। BBC हिंदी ने इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की 2 मुखर शख्सियतों से बात की। ICSSR में प्रोफेसर मधु किश्वर जघन्य अपराधों, खासतौर से चरमपंथ के मामलों में फांसी की सजा के पक्ष में हैं।
आपका कमिटमेंट ही है क्राइम, आपका कमिटमेंट है मास किलिंग, एक नहीं ना, आप तो जीते हैं लोगों को मारने के लिए, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत है। इनको जिंदा रखना जेलों में तो हर वक्त ब्लैकमेल का साधन बन जाता है। जहाँ प्रूफ है और क्राइम कमिटेड है और कोई टेररिज्म का पूरा नुमाइंदा है तो करना ही पड़ेगा।
मधु किश्वर के शब्द। वहीं वरिष्ठ वकील युगमोहित चौधरी सजाए मौत को लोकतंत्र में गैर जरूरी मानते हैं, खासतौर से जनभावना का ख्याल रखते हुए दिए जाने वाले फैसलों पर वो सख्त आपत्ति जताते हैं।
देखिए, जिसका माँ, बेटा, भाई, बहन, उनकी हत्या हुई हो, चाहे रोड एक्सीडेंट में ही क्यों ना हुई हो, वो उनका इमोशन इतना पावरफुल और स्ट्रांग है उस वक्त कि वो रैशनली रीजनेबली सोच नहीं सकते। रोड एक्सीडेंट के लिए भी वो चाहते हैं कि सजाए मौत मिले, क्योंकि उनकी नफरत, उनका गुस्सा इतना वहां उस मौके पे है कि वो कोई रीजन नहीं वहां चलता है, मगर कानून रीजन के हिसाब से चलता है, इमोशन के हिसाब से नहीं चलता है, जिसका लॉस हुआ है अगर आप उससे पूछ के सजा दें तो फिर आपको चेक बाउंसिंग के लिए भी आपको सजाए मौत देनी पड़ेगी। आप कहीं भी देखिए, फ्रांस में देखिए, यूरोप कहीं भी देखिए, इंग्लैंड में देखिए, ऐसी बात नहीं है कि टेररिज्म सिर्फ इंडिया में होता है, टेररिज्म दुनिया भर में होता है और दुनिया के 70% देशों ने इसको अबॉलिश कर दिया है। तो अगर वो काम चला रहा है बिना सजाए मौत के, हम क्यों नहीं कर सकते?
युग मोहित चौधरी के शब्द। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मौत की सजा के मामले दुनिया भर में 37% घट गए हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां अब भी सजाए मौत दी जाती है।
सजाए मौत पर जारी बहस पर ये थे कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अमेरिका में कल संसद के निचले सदन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रस्तावित हेल्थ केयर बिल से जुड़े एक विधेयक पर वोट हुआ, जिससे अमेरिका में स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हो सकती थीं। मगर ट्रंप सरकार एक नया बिल लेकर आई और वो पास हो गया, और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ओबामा की नीति की मौत हो गई है। ओबामा की हेल्थ केयर पॉलिसी लागू होती तो उससे भारत को भी फायदा हो सकता था, जहां सस्ती जेनरिक दवाएं बनती हैं। तो अब क्या भारत के दवा निर्माताओं में कोई निराशा है? ये समझने के लिए मैंने मुंबई में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव दारा पटेल से संपर्क किया।
देखिए, ऐसा है कि फर्क कुछ तो पड़ेगा ही, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। अभी दो चीजें हैं, एक तो अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो कुछ ज्यादा यंग नहीं है, उनके भी सीनियर्स काफी सीनियर सिटीजन आते हैं, और दवाइयों के दाम अन्य कंट्रीज में बढ़ते हैं और उनका बजट जो है वो एक ही रहेगा। ने ट्रंप साहब कहाँ तक बजट बढ़ाते रहेंगे, तो एक लिमिटेड बजट में सभी को दवाइयां देना मुश्किल होने वाला है अमेरिका के लिए। तो कुछ समय के लिए होगा कि अमेरिकन कंपनीज को ही वो लोग सपोर्ट करेंगे, ताकि वहां के लोगों को समझो उनकी आमदनी बढ़ सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लेकिन ये कब तक चलते रहेगा? हम समझते हैं कि अगर इंडिया ने एक मार्क, एक अपना औहदा बना दिया है पूरे विश्व में, और अन्य कंट्रीज भी जो लेती है हमारे से दवाइयाँ, क्योंकि हमारी दवाइयाँ बहुत ही अच्छे दाम में मिलती है, उनको कम दाम में मिलती है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। यूएस एफडीए प्लांट्स सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है, यूएस छोड़ के। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि कुछ महीनों तक ये चलेगा, अल्टीमेटली इनको इंडिया से ही खरीदनी पड़ेगी जेनरिक्स।
ये जो यूएस एफडीए प्लांट्स की बात आप बता रहे हैं, वो क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका की दवाई कंपनियां हैं वो ऑलरेडी भारत में उनका काम चल रहा है, दवाइयां यहां से बनके वहां जा रही हैं?
ऐसा है कि अमेरिकन कंपनीज भी हमारे यहां से खरीदते हैं और खुद अपना लेबल लगा के बेचती है, वो भी एक है, और हमारी कंपनी खुद भी अपने ब्रांड वहां पे बेचती है, दोनों चीजें चल रही है। और इसके लिए यूएस एफडीए का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, और डेटा ये कहता है कि अमेरिका में जितने भी प्लांट्स हैं उनके तो ऑब्वियसली उनकी अप्रूवल होती है, लेकिन अमेरिका से बाहर सभी देशों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यूएस एफडीए प्लांट्स सबसे ज्यादा है। तो इनको पता है कि भाई हमारी दवाइयां अच्छी है, इसीलिए तो वो हमारे से खरीदते हैं और हम अप्रूवल देते हैं ये लोग।
इसका मतलब अभी पूरी उम्मीद है आपको कि ये जो ओबामा हेल्थ केयर पॉलिसी को लेकर,
बिल्कुल बिल्कुल, ये ओबामा पॉलिसी रद्द करके अगर वो समझते हैं कि और किसी देश से लेंगे या खुद बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं चलने होंगे, उनके कॉस्ट ही ज्यादा है ना, उनकी सैलरी ज्यादा है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है, लैंड कॉस्ट ज्यादा है, तो मशीनरीज का कॉस्ट ज्यादा है, R&D का कॉस्ट ज्यादा है, तो इन सबको मद्देनजर रखते अल्टीमेटली तो उनको हमसे लेना ही पड़ेगा।
ये थे इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव दारा पटेल।
बीबीसी इंडिया बोल।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नागरिकों को अपने शरीर पर मुकम्मल अधिकार नहीं है। इसी तर्क के सहारे आधार कार्ड के लिए आपकी उंगलियों और आंखों की पुतलियों के निशान लिए जा रहे हैं। सवाल है कि आपके शरीर पर हक किसका है, आपका या सरकार का? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। चर्चा में शामिल होने के लिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी हिंदी की शाम की सभा में आप सुन रहे हैं दिन भर। अब से 72 साल पहले कोई इन्हीं दिनों जर्मन सेनाओं ने मित्र राष्ट्र और सोवियत सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था, और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने गुप्त बंकर में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन दिनों हिटलर के बंकर में क्या कुछ घट रहा था और वो क्या परिस्थितियां थीं जिसने हिटलर को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया। बीबीसी आर्काइव्स की पुरानी रिकॉर्डिंग्स की मदद से बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
We are interrupting our programs to bring you a news flash.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
BBC पर यह समाचार 1 मई 1945 को प्रसारित किया गया। इससे पहले जर्मन रेडियो ने भी घोषणा की कि अडोल्फ हिटलर अपनी आखिरी सांसों तक रूसियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। वास्तव में हिटलर मारे नहीं गए थे, उन्होंने आत्महत्या की थी। जैसे जैसे रूसी सैनिक बर्लिन की तरफ बढ़ते गए, हिटलर और उनके नज़दीकी साथियों ने चांसलरी के 50 फीट नीचे बनाए बंकर में शरण ली थी। हिटलर की निजी सचिव रही त्राउदी जुंगा अंतिम क्षणों तक उस बंकर में हिटलर के साथ थी।
The last 10 days were actually a nightmare. We were sitting in the bunker and the Russians came closer and nearer and we heard.
आखिरी 10 दिन वास्तव में हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। हम बंकर में छिपे बैठे थे और रूसी सैनिक हमारे नजदीक चले आ रहे थे। हम उनकी गोलीबारी, बमों और गोलों की आवाज साफ सुन सकते थे।
हिटलर भूमिगत बंकर में ही अपना सारा काम करते और 2-3 घंटे की ही नींद लेते। सिर्फ अपनी कुतिया ब्लॉन्डी को थोड़ी कसरत कराने के लिए वो कभी कभी चांसलरी के बगीचे में जाते, जहां चारों तरफ टूटी हुई इमारतों के मलबे पड़े होते। हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाते थे।
Hitler was sitting and waiting for some rescue, but he made very clear that if he couldn't get a victory in Berlin, he wouldn't leave, but he would die in Berlin. He would stay and make.
Hitler bunker में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहर से आकर उन्हें बचाएगा, लेकिन एक बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी कि अगर लड़ाई में उनकी जीत नहीं होती है तो वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेंगे। इसीलिए हमें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सबसे कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं, तो उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन सबसे पहले बोली, आपको पता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अपने आप यही बात मेरे मुंह से भी निकली थी।
उसी दौरान हिटलर के युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर में आए थे। बाद में स्पीयर ने याद किया कि तब तक हिटलर की शख्सियत में बहुत बदलाव आ चुके थे।
हिटलर इन सोस लास्ट वीक्स मेड अ पिटीफुल अपीयरेंस। ही वाज शेकिंग एंड ही वाज
अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा शरीर हिलने लगा था और उनके कंधे झुक गए थे। उनके कपड़े गंदे थे और सबसे बड़ी बात, उनके मेरे प्रति रुख में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं उनसे विदा लेने आया था और उन्हें पता था कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी चीज कही हो जो दिल को छू लेने वाली हो।
हिटलर की उस समय की हालत का वर्णन रॉबर्ट पेन ने अपनी बहुचर्चित किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ अडोल्फ हिटलर में किया है।
हिटलर का चेहरा सूज गया था और उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थी। उनकी आंखों में चमक और जीवन जाता रहा था। कभी कभी उनका बायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कंपकपाहट को रोकने के लिए वो उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ते थे। जिस तरह से वो अपने कंधों के बीच अपने सिर को छिपाने की कोशिश करते थे, उससे किसी बूढ़े गिद्ध का आभास मिलता था। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात थी उनकी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाती चाल। वो थोड़ी दूर चलते और रुक कर किसी मेज का कोना पकड़ लेते। 6 महीनों के भीतर ही वो 10 साल बूढ़े हो गए थे।
27 अप्रैल आते आते बर्लिन पूरी तरह जर्मनी से कट चुका था।
Everybody was waiting that Hitler make suicide, but he had to marry first and to dictate his last will.
हर कोई इंतजार कर रहा था कि हिटलर आत्महत्या करें, लेकिन उनको पहले शादी करनी थी और फिर अपनी आखिरी वसीयत भी डिक्टेट करनी थी। मैं बात कर रही हूँ 28 अप्रैल की।
बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया कि वो अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी कर उस रिश्ते को वैधता प्रदान करेंगे। रॉबर्ट पेन लिखते हैं,
सवाल उठा कि शादी कौन कराएगा। गोइबल्स को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैगनर ने उनकी शादी कराई थी। दिक्कत यह थी कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। उनके आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए। उसे लेने वो दोबारा अपने घर गए। रूसियों की भयानक गोलाबारी के बीच मलबे से अटी पड़ी सड़कों से होते हुए वैगनर वापस हिटलर के बंकर में पहुंचे। उस समय शादी की दावत शुरू होने वाली थी और हिटलर और इवा ब्राउन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे।
हिटलर ने गोबल्स और इवा ब्राउन ने बोरमन को अपना गवाह बनाया। रॉबर्ट पेन आगे लिखते हैं,
शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। इवा ब्राउन ने पहले शादी से पहले वाला अपना नाम ब्राउन लिखना चाहा। उन्होंने उसका पहला अक्षर बी लिख भी दिया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे काटा और साफ साफ इवा हिटलर ब्राउन लिखा। गोइबल्स ने मकड़ी के जाले से मिलता जुलता हस्ताक्षर किया, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर लगाना नहीं भूले। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो कि गलत थी, क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था।
शादी के बाद भोज में बोरमन, गोबल्स, मागदा गोबल्स, जनरल क्रेप्स, जनरल बर्गडॉफ, हिटलर की दो निजी सचिव और उनका शाकाहारी रसोईया भी शामिल हुआ। इवा हिटलर के स्वास्थ्य के लिए सबने जाम उठाए। इवा ने काफी शैंपेन पी ली। हिटलर ने भी शैंपेन का एक घूंट लिया और पुराने दिनों के बारे में बात करने लगे जब वो गोबल्स की शादी में शामिल हुए थे। फिर अचानक उनका मूड बदल गया और वो बोले, सब खत्म हो गया, मुझे हर एक ने धोखा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिन हिटलर ने कुछ घंटों की नींद ली और तरोताजा उठे। अक्सर ये देखा गया है कि मौत की सजा पाए कैदी अपनी मौत से पहले की रात चैन की नींद सोते हैं। नहाने और शेव करने के बाद हिटलर अपने जनरलों से मिले। उन्होंने कहा कि अंत नजदीक है, सोवियत सैनिक किसी भी क्षण उनके बंकर में घुस सकते हैं। रॉबर्ट पेन लिखते हैं,
हिटलर ने सलाह दी कि जहर का परीक्षण उनकी प्रिय कुतिया ब्लॉन्डी पर किया जाए। परीक्षण के बाद हासेनेर हिटलर को रिपोर्ट दी। परीक्षण सफल रहा, ब्लॉन्डी को मरने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, पर हिटलर की खुद इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मरने के बाद ब्लॉन्डी और उसके 6 पिल्लों को एक बक्से में रखकर चांसलरी के बगीचे में लाया गया। पिल्ले अभी तक अपनी मां के स्तनों से चिपके हुए थे। तभी ओटे ग्वेंशे ने उन्हें एक एक करके गोली मारी और उस बक्से को बगीचे में ही दफना दिया गया।
भोजन के बाद हिटलर आखिरी बार अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने बिना उनके चेहरे को देखे उनसे हाथ मिलाए। उनकी पत्नी इवा ब्राउन भी उनके साथ थी। उन्होंने गहरे नीले रंग की पोशाक और ब्राउन रंग के इटालियन जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर हीरो से जड़ी प्लैटिनम की घड़ी बंधी हुई थी। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हेंसलिंगे को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने कब अपने आप को गोली मारी। उनको इसका पहला आभास तब हुआ जब उनकी नाक में बारूद की हल्की सी गंध गई। रोकस मिश्ट हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर थे। कुछ सालों पहले उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
अचानक मैंने सुना कि कोई हिटलर के अटेंडेंट से चिल्ला कर कह रहा था, लिंगे लिंगे, शायद हिटलर नहीं रहे। शायद उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसी समय हिटलर के निजी सचिव बोरमैन ने सबको चुप होने के लिए कहा। हर कोई फुसफुसा कर बात कर रहा था। तभी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। मैंने देखा हिटलर का सिर मेज़ पर ढलका हुआ था। इवा ब्राउन सोफे पर लेटी हुई थीं और उनके घुटने उनके सीने तक मुड़े हुए थे। उन्होंने गाढ़े नीले रंग की पोशाक पहनी थी जिस पर सफ़ेद रंग की फर लगी हुई थी। मरते मरते शायद उन्होंने अपना हाथ फैलाया था, जिसकी वजह से वहां रखा फूलों का आवाज़ गिर गया था। मैं इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता।
इसके बाद लिंगे ने हिटलर के शव को कंबल में लपेट दिया और वो उसे लेकर इमरजेंसी दरवाजे से ऊपर चांसलरी के बगीचे में आए। बॉर्मन ने इवा ब्राउन के शव को अपने हाथों में उठाया। रोकस मिश याद करते हैं।
जब वो हिटलर के शव को मेरे पास से लेकर गुजरे तो उनके पैर नीचे लटक रहे थे। किसी ने मुझसे चिल्लाकर कहा, जल्दी ऊपर आओ, वो लोग बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया।
इस दृश्य को हिटलर के अंतिम दिनों के सभी साथी बंकर के दरवाजे से देख रहे थे। जैसे ही उनके शवों में आग लगाई गई, सभी ने हाथ ऊंचे कर हेल हिटलर कहा और वापस बंकर में लौट गए। उस समय तेज हवा चल रही थी। जब लपटें कम हुई तो इन पर और पेट्रोल डाला गया। 2.5 घंटे तक लपटें उठती रहीं। रात 11 बजे ग्वेंशे ने SS जवानों को उन जले हुए शवों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जब सोवियत जांचकर्ताओं ने हिटलर और उनकी पत्नी के अवशेषों को बाहर निकाला तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वहां एक डेंटल ब्रिज जरूर मिला। 1938 से हिटलर के दंत चिकित्सक के लिए काम करने वाले एक शख्स ने पुष्टि की कि वो डेंटल ब्रिज हिटलर के ही थे। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
हिटलर के अंतिम दिनों के बारे में रेहान फजल की विवेचना कैसी लगी बताइएगा। और अब समय है खेल समाचारों का। राखी हमारे साथ हैं।
जी, सबसे पहले तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से खबर आ रही है, जहां भारत का फाइनल में पहुंचने का सपना जो है वो टूट चुका है और भारत को मलेशिया के खिलाफ आखिरी लीग मैच में 0-1 से हार झेलनी पड़ी है। अब से कुछ ही देर पहले दोनों टीमों के बीच ये आखिरी लीग मैच खत्म हुआ, जिसमें भारत को फाइनल में कदम रखने के लिए 2 गोल के मार्जिन से जीत की दरकार थी, जो ऐसा नहीं कर पाई। भारत पिछले साल इस टूर्नामेंट की रनर अप टीम रही है, अब उसे तीसरे स्थान के लिए कल न्यूजीलैंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं अजलान शाह कप 2017 के फाइनल में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया पहली टीम रही, हालांकि ये टीम आज अपने आखिरी लीग मैच में उलटफेर का शिकार हो गई, उसे जापान के हाथों मात खानी पड़ी। इस टूर्नामेंट में हुए आज 3 मुकाबलों में पहले मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया और अब जबकि भारत ये मैच हार चुका है तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को जापान ने 3-2 से मात दी और ये जापान की विश्व चैंपियन टीम पर पिछले 97 सालों में पहली जीत रही। वहीं ताशकंद में जारी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। 60 किलो वर्ग में भारत के शिव थापा और 91 किलो वर्ग में सुमित सांगवान फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। शिव ने जहां मंगोलिया के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया, वहीं सुमित ने तजाकिस्तान के खिलाड़ी को मात दी। हालांकि 75 किलो वर्ग में भारत के विकास कृष्णन को ब्रोंज से ही संतोष करना पड़ा, उन्हें सेमीफाइनल में कोरिया के ली डोयोन ने शिकस्त दी। और अब टेनिस की, विश्व नंबर 2 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आज अपनी कोचिंग टीम से अलग होने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। पिछले महीने जोकोविच मोंटे कार्लो मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे, साथ ही लंबे वक्त से वो अपनी फॉर्म से भी जूझ रहे थे। पिछले साल जून में अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के बाद से उनकी फॉर्म में लगातार गिरावट देखी जा रही थी।
खेल समाचार सुन रही थी राखी शर्मा। और अब संदीप सोनी से सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। भारत में दिसंबर 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को मिली मौत की सजा बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN बोहरा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात पर विचार विमर्श किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज शाम सार्क सैटेलाइट GSAT-9 का प्रक्षेपण किया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से मिल रही खबरों के मुताबिक सीमा पर दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के कम से कम 9 नागरिक मारे गए हैं और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अपने नेता किम जोंग उन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन में 1 महीने बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। BBC समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।